खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी हाजिर है। दोस्तों, स्वीकार करें गणेश चतुर्थी की अशेष मंगल कामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है। महाराष्ट्र में इसकी धूम होती है, लेकिन इस बार कैसी रहेगी गणेश चतुर्थी, सुने आज के पॉडकास्ट में। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा के बीच देश के यूपी, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। बिहार में सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट किया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी वायरल फीवर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इन खबरों के अलावा आज हम आपको बताएंगे कि कई राज्यों में राज्यपाल बदल दिए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया गया है। आज के पॉडकास्ट में छत्तीसगढ़ और पंजाब की खबरें भी होंगी। आइए सुने आज की पहली खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कई राज्यपालों के बदलाव और नियुक्ति का आदेश जारी किया। कुछ राज्यपालों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उनकी जगह अब सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के राज्यपाल में भी बदलाव किया गया है। अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नए आदेश के बाद अब नागालैंड के राज्यपाल रहे आरएन रवि को तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इनकम टैक्स पोर्टल में खराबी आने के कारण इस बात का अंदाज़ा पहले से लगाया जा रहा था कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने गुरुवार को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर करने की घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। अब इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोर्टल में चल रही गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अधिकतर मौतें डेंगू बुखार के D2 स्ट्रेन के कारण हुई हैं। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा गुरुवार को आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बुखार के नमूनों की जांच करने पर हमें डेंगू के D2 स्ट्रेन का पता चला है। बता दें कि पिछले दिनों ICMR की 11 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद पहुंची थी और सैंपल्स इकट्ठा किए थे। विशेषज्ञों के मुताबिक डेंगू का D2 स्ट्रेन सबसे खतरनाक माना जाता है। इससे 3 से 5 दिनों में लाल चकत्ते पड़ने लग जाते हैं। साथ ही शरीर में ब्लड के प्लेटलेट्स तेजी से घटने शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू रक्तस्रावी बुखार और शॉक सिंड्रोम मृत्यु के कारण बन सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच मध्य प्रदेश में वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहे हैं। राजधानी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इन मरीजों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। भोपाल में तो बीमार होने वाले बच्चों की संख्या 355 से ज़्यादा है। जबलपुर में मरीजों का आंकड़ा 500 के आसपास छू रहा है। ग्वालियर में मरीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी भोपाल में वायरल फीवर बच्चों पर सीधा असर कर रहा है। भोपाल के निजी व सरकारी अस्पतालों में 355 से ज़्यादा बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। यहाँ 50 से 60 बच्चे रोज वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। OPD की संख्या भी सरकारी निजी अस्पतालों में 60% बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में एक एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को भर्ती किया गया है। करीब करीब सभी अस्पताल बच्चों से भर चुके हैं। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। आज गणेश चतुर्थी है और अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। मुंबई में गुरुवार को 457 नए मामले सामने आए। लिहाजा सरकार ने गणेश उत्सव पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों ने भी गाइडलाइन जारी किए हैं। कोविड 19 की स्थिति के मद्देनज़र पुलिस ने मुंबई में 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू कर दिया है। इस दौरान शहर में किसी भी तरह के जुलूस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। इधर बीएमसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। वहीं घर में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय अधिकतम 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा उत्सव के दौरान जुलूस में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से कोरोना के टीके की दोनों खुराक लेनी होगी और दूसरी खुराक को 15 दिन से अधिक समय का होना चाहिए। पंजाब में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शुक्रवार यानी आज राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है। भाजपा को इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है। पंजाब विधानसभा के चुनाव अगले साल शुरू होने हैं। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि किसान संगठनों ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों का समर्थन करने वाली भाजपा को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा जाएगा कि वे चुनाव की घोषणा होने तक चुनाव प्रचार में शामिल न हों या राजनीतिक रैलियां न करें, क्योंकि इससे चल रहे किसान आंदोलन को नुकसान पहुंच सकता है। शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बैठक में भाग लेने के लिए बलविंदर सिंह भुंदर, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, महेश इंदर सिंह ग्रेवाल और दलजीत सिंह चीमा को प्रतिनियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि शुक्रवार को किसान संगठनों द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही विधवाओं में से 2 ने आत्मदाह की कोशिश की। आत्मदाह की यह कोशिश तब की गई जब प्रदेश भर में तीज का पर्व मनाया जा रहा था। दरअसल कुछ महिलाएं एक पेड़ की छांव तले 51 दिनों से धरने पर बैठी हैं। कल यानी गुरुवार को आंदोलनकारियों ने आत्मदाह की कोशिश की। यह देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक्शन लिया और महिलाओं को आत्मदाह करने से रोक लिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में दिवंगत शिक्षकों की ये विधवाएं 51 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर रायपुर में प्रदर्शन कर रही हैं। बीते गुरुवार को 2 महिलाओं ने धरना स्थल पर अग्नि समाधि लेने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। बाराबंकी में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी का कटरा मोहल्ले में कार्यक्रम था। आरोप है कि इस कार्यक्रम में ओवैसी ने महामारी अधिनियम और प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन तो किया ही, अपने भाषण से धार्मिक उन्माद भड़काने की भी कोशिश की। इस बाबत चौकी इंचार्ज हरिशंकर साहू ने तहरीर दी है। उनकी तहरीर पर ही मामला दर्ज किया गया है। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने को लेकर शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।